सौ वाले शब्द। शंकर, शिव, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महादेव, महेश, देवाधिदेव, कैलाशपति। शंका, संदेह, शक, आशंका, संशय, सुबह। शक्ति, बल, सामर्थ्य, क्षमता, ताकत, जोर। शनै, धीरे, हौले, अहिस्ता, धीमा। शपथ, कसम, हलफ, सौगंध। शत्रु, बैरी, अमिष, रिपु, दुश्मन, अरि, विपक्षी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंद्वी। शरीर, काया, गात, बपु, तन, अंग, देह, बदन। शव, लाश, मिट्टी, मुर्दा, लोथ। शस्त्र, अस्त्र, हथियार, आयुध। शाप, अवग्रह, दुर्वचन, बधुआ। शायद, संभवतः, सयातः, कदाचित्। शालीन, सौम्य, भद्र, शिष्ट, सलज्ज, नर्म, विनम्र। शाश्वत, सर्वकालिक, अक्षय, सनातन, नित्य, चिंतरण, स्थायी। शिकार, आखेट, लुब्धक, बहेलिया, अहेरी, व्याघ्र। शिखा, जूड़ा, चोटी, चुंडी, चुटिया, शीर्ष। स्थिल, मंद, ढीला, सुस्त, आलसी, अशक्त। शिरा, धमनी, नस, नाड़ी। शिल्पी, कारीगर, दस्तकार, शिल्पकार। शिष्ट, सज्जन, सभ्य, शालीन, अनुशासित। शीघ्र, अविलंब, तुरंत, जल्दी, त्वरित, तक्षण। शुक्ल, सफेद, धवल, उजला, धौला, श्वेत, शुभ्र, मौर, मित, अवदान, उज्ज्वल। शुभ, मंगल, कल्याणकारी, मंगलकारी, मंगलपद, शुभकर, कल्याणपद, शुभदा। शून्य, रिक्त, खाली, रहित, हीन, विहीन। श्रृंगार, भूषा, साज सज्जा, रूप सज्जा, श्रृंगार, सजावट। शेर, शार्दूल, केहरी, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी, सिंह। शेषनाग, अही, नाग, भुजंग, ब्याल, उरंग, पनग, फणीश। शैली, प्रणाली, ढंग, विधि, रीति, परिपाटी। शोध, अनुसंधान, खोज, गवेषण। शोभा, सुंदरता, छटा, सौंदर्य, सुषमा, मनोहरता, मनजुलता, छवि। शमशान, मरघट, मसान, दाह स्थल, कब्रगाह। श्रमिक, मेहनतकश, मजदूर, कामगार, श्रमजीवी। श्रेष्ठ, मुख्य, प्रधान, उत्कृष्ट, सर्वोपरि, विशिष्ट। शिक्षा, तालीम, प्रशिक्षण, उपदेश, नसीहत, सीख, शान। श वाले शब्द, षड्यंत्र, साजिद, दुर्संधि, अभिसंधि, कुचक्र। स वाले शब्द, संन्यासी, दंडी, बैरागी, विरत, त्यागी, परिवार्जक। संगलन, अनुबद्ध, नत्थी, संयुक्त, संबद्ध। संवाद, वार्तालाप, बातचीत, संभाषण। संसार, विश्व, दुनिया, जग, जगत, जगति, इहलोक। संस्थापक, सच्चा चालक, प्रवर्तक, मूलकर्ता। संहार, बर्बादी, समाप्ति, अंत, नाश, ध्वंस, विध्वंस। संग्रह, संचय, संकलन, जमाव, एकत्र, इकट्ठा। संतप्त, पीड़ित, व्यथित, दुखी, क्लेशित, वेदनाग्रस्त। संक्रामक, छूतहा, स्पर्श, सांसंगिक। संकेत, इशारा, शयन, इंकत। संकम, साथ, मेल, संग, संयोग, मिलाप, समागम, मिलन, सम्मिलित। संतोष, संतुष्टि, तृप्ति, तुष्टि, सब्र, तोष, इत्मीनान। संदिग्ध, शंकापद, संदेहजनक, शंका, संशयावित। संध्या, निसारभ, दिनावसान, दिनांत, सायकाल, गोधूलि, प्रदोषकाल, सांझ। सच्चा, सत्यभाषी, सत्यवर्त, सत्यवादी, सत्यधर्मी। सजग, चौकस, चौकन्ना, सतर्क, सचेत, होशियार, सावधान, सदा, हमेशा, हरदम, निरंतर, नित्य, सदैव, चिरंतन, सफल, कामयाब, फलवान, कृतार्थ, कृतज्ञ, फलीभूत, सभ्यता, भद्रता, शिष्टाचार, शिष्टता, सुशीलता, शीलवता, समकालीन, समसायिक, समकालिक, समवयस्क, समता, तुल्यता, बराबरी, समत्व, सादृश्य, साम्य, समानता, समवय, ससर्ग, मेल, सामंजस्य, मध्य, मार्ग, समय, काल, वक्त, बेला, अवधि, समर्थन, मंडन, पृष्ठ पोषण, अनुमोदन, पक्ष पोषण, समस्त, कुल, पूरा, समूचा, सारा, समग्र, समान, बराबर, तुल्य, तत्सम, तदुप, अनुरूप, सदृश, सम, समिति, संस्था, संस्थान, संघ, संगठन, सभा, मंडली, समीक्षा, सम आलोचना, निरूपण, विवेचना, समालोचना, मीमांसा, समीचीन, ठीक, उपयुक्त, उचित, वाजिब, मुनासिब, संपूर्ण, सर्व, समस्त, अखिल, सकल, समग्र, पूर्ण, समूचा, समुद्र, सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पयोधि, परावर, नरदिश, पयोनिधि, वरिष, रत्नाकर, अर्णव, निर्धि, अबधि, वराधि, जलाधम, निरधि, तयोधि, निधि, सरस्वती, कर्णिका, भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भासा, इला, ब्राह्मणी, वीणापति, वगिश, महाश्वेता, श्री, निधात्री, वागेश्वरी, हंसवाहिनी, वीणावादिनी, पुस्तकधारिणी, समूह, निकर, समुदाय, वृंद, गण, संक, पुंज, समुच्चय, कलाप, युथ, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, राशि, संगठन, सम्राट, अधिपति, शहंशाह, राजाधिराज, अधीश्वर, महाराजा, नृपति, सरल, बोधात्मक, सुगम, बोधगम्य, आसान, सुबोध, सहज, सर्प, अहि, भुजंग, दिहि, मणिधर, विषधर, व्याल, फणि, उरग, पनग, नाग, सांप, द्विज, भोगी, साप, स्वच्छ, उजला, निर्मल, उज्जवल, शुक्ल, श्वेत, पवित्र, शुभ, सूची, धवल, सीति, गौर, अवदात, सही, ठीक, यथार्थ, उचित, संकट, उपयुक्त, सच, शुद्ध, वास्तविक, सात्वना, दिलासा, आश्वासन, ढांढस, सार, सत, रस, निचोड़, सत्व, सारंग, सिंह, हाथी, कोयल, कामदेह, मृगा, सारांश, निचोड़, संक्षेप, सार, सिंह, शार्दूल, हरि, केहरि, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केसी, पुंडरिक, नायायुध, वनहरि, नाहर, मृगराहर, शेर, बाहुबल, सिंहासन, राजगद्दी, तख्त, राजसन, सिफारिश, अभिशात्व, संतुष्टि, अनुशंसा, सीता, भूमिजा, वैदेही, जनकिशोरी, जनकन्या, जानकी, रामप्रिया, जनसुखता, जगज्जननी, सीमित, निश्चिंत, परिसीमित, निर्धारित, मर्यादित, परिमित, सुंदर, मनोहर, मनोरम, रम्य, रुचि, रमणीय, रमणीक, चारु, खूबसूरत, बेहतरीन, ललित, सुंदरी, रूपसी, रूपराशि, सुभगवा, सुदर्शना, छबीली, हसीना, सुख, आनंद, चैन, मजा, परितोष, सुगंधि, खुशबू, महक, सुवास, सुरभि, परिमल, सुबोध, सरल, आसान, सुस्पष्ट, सुगम, बोधगम्य, सुविधा, सहूलियत, सुगमता, सुभीता, आसानी, सुस्ताना, ठहरना, रुकना, दम लेना, विश्राम करना, सुवर, वराह, सुकर, सुकर, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अर्क, कमल, बंधु, चंडासु, आदित्य, हंस, दीनामणि, मारीचिमाली, सौम्य, नर्म, शांत, विनती, शिष्ट, मिलनसार, स्थल, स्थान, ठाव, ठोर, भूमि, जगत, स्थायी, स्थिर, दृढ़, टिकाऊ, पक्का, मजबूत, स्थावर, अटल, अचल, स्थिर, निश्चर, अचर, स्त्री, नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामिनी, भागिनी, भार्या, ललना, वामा, स्थिर, स्थायी, अडिग, निश्चल, दृढ़, स्थावर, स्पष्ट साफ व्यक्त प्रत्यक्ष प्रकट जाहिर। स्तुति प्रार्थना पूजा आराधना अर्चना स्वर्ग धौ देवलोक सुरलोक इंद्रपुरी दिव्य नाक वैकुंठ सुरपुर स्वतंत्र मुक्त रिहा आजाद स्वायत्त स्वाधीन। स्वभाव आदत प्रकृति मिजाज टेक। स्वर्ण सुवर्ण कंचन हेम हाटक जात रूप सोना ताम्रस हिरणक कनक। स्वागत सुगमन अवगानी आभगत स्वादिष्ट जायकेदार मजेदार रुचिकर रसदार। स्वीकार अंगीकार कबूल मंजूरी स्वीकृति। हा वाले शब्द हंस मराल सरस्वती वाहन मुक्त भूक हंस मुख खुश मिजा जिंदा दिल प्रसन्न वदन प्रसन्नचित प्रफुल्ल। हसी हास्य श्रीमती मुस्कुराहट मुस्कान हठ जिद टेक और दुराग्रह। हठ जिद टेक हताश मायूस निराश आशाहीन। हथियाना अधिकार जमाना दखल करना दबा लेना हड़पना कब्जा करना अधिग्रहण। हत्या खून कत्ल वध जीवघात। हनुमान पवनसुत पवन कुमार महावीर रामदूत बजांगी मारुति नंदन अजय कपिश पवन पुत्र। हरि बंदर इंद्र विष्णु चंद्र सिंह हर्षित आहाद पूर्ण प्रफुल्ल प्रमुदित प्रसन्न खुश। हवाला अर्पण समर्पण सपुर्दगी हार मात पराभव पराजय शिकायत। हित उपकार भला मंगल कल्याण भलाई। हाथी हस्ती गज कुड़ी कंजर दिरद नाग दंती कुंभी सिंधूर मतंग व्याल वितंड। हितैषी हितचिंतक शुभकामी शुभचिंतक मंगलाक्षी शुभेक्षु। हिम तुषार निहार बर्फ तुहिन हिमालय हिमगिरी हिमपति हिमाद्री हिमांचल नगराज शैलेंद्र नगपति गिरिराज। हिरण मृग सारंग हरिन सुरभि कुरल चितल बारासिंघा। हिस्सेदार अंशधारी भागीदार साझेदार अंशभागी। हे तुच्छ अनादरणीय घटिया तिरस्कारपूर्ण उपेक्षापूर्ण गर्हित विभत्सक हाश क्षय क्षति घटाओ गिरावट कमी न्यूनता हानि। हाथ हस्त कर बाह पानी भुजा। पर्याय शब्दों के सूक्ष्म अंतर। अक्षर जो ध्वनि उच्चारित होती है उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण जब अक्षर से लिपिबद्ध की जाती है तब उसकी संज्ञा वर्ण हो जाती है। अस्त्र जिस हथियार को फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे धनुष तोप बंदूक। शस्त्र जो हथियार फेंक कर नहीं चलाया जाता उसे शस्त्र कहते हैं, जैसे लाठी भाला तलवार डंडा राड। अनुकंपा दूसरों के दुख से उत्पन्न दुख अनुकंपा कहलाता है, जैसे शरणार्थियों की दशा को देख अनुकंपा उत्पन्न होती है। दया दूसरों के दुख को दूर करने के भाव का नाम दया है। करुणा दूसरों के दुख को दूर करने की व्याकुलता का भाव करुणा है, जैसे अभ नाथ करी करुणा बिहलो कहूँ देहु जो बर मांगही। कृपा किसी दूसरे के कहने से दुख दूर करने के लिए उत्पन्न भाव कृपा है। अधिकतर छोटों के प्रति दया दिखाने के रूप में होता है, जैसे जाति दिन नेह करु कृपा मदरमय अनुग्रह संपादन को अनुग्रह कहते हैं, जैसे तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाहिए। अनुसरण, अनुसरण में पीछे चलने का भाव होता है, जैसे महापुरुषों के अनुसरण से मनुष्य अपने जीवन को बहुत कुछ उन्नत बना सकता है। अनुकरण, इसमें पीछा करने का भाव होता है, जैसे बच्चों में अनुकरण की शक्ति बहुत अधिक होती है। अमूल्य, अमूल्य जो वस्तु मूल्य देने में भी ना मिल सके वह अमूल्य है, जैसे इस संसार में विद्या और यश अमूल्य है, वे बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं। बहुमूल्य, जिस वस्तु का मूल्य अत्यधिक होता है उसे बहुमूल्य कहते हैं, जैसे अकाल पड़ने पर अन्न जल बहुमूल्य हो जाते हैं। अली, अली एक स्त्री दूसरी स्त्री को जिससे उसका साधारण प्रेम है अली शब्द से पुकारती है। सखी, इसमें आली की अपेक्षा कुछ मुख्यता का भाव अधिक रहता है। इस शब्द से अंतर आत्मा का भाव प्रकट होता है, जैसे पति रति की बतिया कही सखी लखी मुस्काए के कैसे टला टली अली चली सुपाए। अज्ञान, अज्ञान जिसमें स्वाभाविक बुद्धि ना हो वह अज्ञान कहलाता है, जैसे सारिका में तनिक बुद्धि नहीं इसलिए लोग उसे अज्ञानी कहते हैं। अनजान, जिसे समझने का अवसर ना मिला हो वह अनजान कहलाता है, जैसे भाई इस स्थान के लिए मैं बिल्कुल नया हूँ इसलिए यहाँ की बातों से मैं अनजान हूँ। अग, अचल स्थावर, अघ पाप मैल। अंबुज, अंबुज मतलब कमल का फूल। अम्बुद मतलब बादल। अनुशासन, आज्ञा आदेश, जैसे प्रचार्य जी आपका अनुशासन पाते ही मैं समस्त उपद्रवी विद्यार्थियों को विद्यालय से बाहर कर दूंगा। प्रशासन, राज्य प्रशासन का प्रबंध अथवा व्यवस्था, जैसे इस राज्य में प्रत्येक वर्ष भीषण बाढ़ आती है पर यहाँ का प्रशासन अपाहिज बना रहता है। अपेक्षा, आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह, जैसे मेरी आपसे अपेक्षा है कि मेरे मृत्यु परंत मेरे लेखन कार्य को आप संभालें। उपेक्षा, उदासीनता, विरक्ति, लापरवाही, घृणा, तिरस्कार, जैसे आज जो व्यक्ति साधनहीन है उसकी प्रत्येक व्यक्ति उपेक्षा करता है। अद्वितीय, अद्वितीय वह है जो अपने वर्ग में अपने ढंग का एक ही हो। अनुपम, अनुपम वह है जिसकी किसी से उपमा ना दी जा सकती हो। विलक्षण, विलक्षण विचित्र से अधिक गंभीर शब्द है। विचित्र वस्तु अपने रूपागत वैशिष्ट्य के कारण हमारा ध्यान आकृष्ट करती है, परंतु विलक्षण वह है जो अपने विशिष्ट लक्षण के कारण अन्य से पहले हमारे ध्यान में आए हैं और हम चकित भी रह सके। निराला, निराला वह है जो अपनी बनावट रूप के आकर्षण और सौंदर्य के कारण अपने वर्ग में अपना विशिष्ट स्थान रखता हो। चमत्कारिक विचित्र पदार्थ को देखकर जब हमारे हृदय में विस्मय जनक और कौतूहलजन्य चमत्कार पैदा होकर इस सीमा तक बढ़ जाए कि अर्थ कुछ समझ ही ना सके, तब वह हमारे लिए चमत्कारिक बन जाता है। लोकोत्तर, लोकोत्तर वह है जो साधारणतः इस लोक में घटित नहीं होता, जो मानव बुद्धि से परे हो, वह लोकोत्तर है। अधिकार, अधिकार मनुष्य के उस स्वामित्व का सूचक है जिसके अनुसार वह किसी वस्तु का मनमाना उपभोग कर सकता है। अधिकार स्वाभाविक भी हो सकता है और मनुष्यकृत भी। अधिकतर नियम योग्यता शक्ति और संपत्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। जन्मसिद्ध अधिकार मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार ही उसके जन्मसिद्ध अधिकार हैं। आत्मरक्षा और जीवन यापन मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। परमाधिकार, परमाधिकार वह विशिष्ट अधिकार है जो विशिष्ट सत्ता के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इन अधिकारों की प्राप्ति लिंग, पद, गुणों आदि के कारण होती है। परमाधिकार भी दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और नरसैंगिक। स्त्री को संतान प्रसव करने का ईश्वर प्रदत्त परमाधिकार है। हाँ, कृत्रिम परमाधिकार छीने जा सकते हैं। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार वह विशिष्ट अधिकार है जो किसी को सुविधार्थ प्रदान किया जा सकता है। यह अधिकार विशेष लोगों को विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध होता है। यह काम करने या उससे बचने के लिए दिया जाता है। विशेषाधिकार कृत्रिम होते हैं। मताधिकार, मत प्लस अधिकार। मताधिकार वयस्क नागरिकों को निर्वाचन में अपने मत प्रकट करने के लिए मिलता है। इसका प्रयोग किसी विचारणीय विषय में अपना मत प्रकट करने के लिए भी होता है। इसका प्रयोग शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं के क्षेत्रों में होता है। इस अधिकार प्रयोग के नियम और बंधन भी होते हैं। अध्ययचरण, अध्ययचरण अंग्रेजी के शब्द क्लेम शब्द का समान अर्थी है। अध्ययचरण दर्नन शब्द में अधि उपसर्ग लगाकर बनाया गया है, जिसका कुछ अर्थ कुछ मांगना या पाने के लिए प्रार्थना करना है। इसमें केवल अपनी मांग या अधिकार प्रतिपादित करने का भाव मुख्य है। इस अधिकार की मांग अधिकार रहित या अधिकार में आपत्ति किए जाने पर उस व्यक्ति से ही की जा सकती है जो या तो मांगा हुआ हो, अधिकार स्वयं को दे सकता हो या दिला सकता हो। यह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी, स्वीकृति भी हो सकती है और अस्वीकृति भी। समनुज्ञा, यह अधिकार किसी ऐसे कार्य या बात के लिए प्राप्त होता है जो साधारणतः औरों के लिए वर्जित है। यह विशेष रूप से विशेष शर्तों के साथ मिलने वाला अधिकार है, जैसे बंदूक रखने की समनुज्ञा कुछ विशिष्ट लोगों को ही दी जाती है। कभी-कभी इसका प्रयोग स्वतंत्रता के दुरुपयोग के अर्थ में होता है और कभी-कभी स्वच्छंदता के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। अनबन, खटपट। अनबन का अर्थ वह अवस्था है जिसमें दो व्यक्तियों या पक्षों आपस में ना बनती हो, उनका मिलजुल कर कार्य करना संभव ना हो। इसमें कोई विशेष विरोध क्रिया नहीं होती और ना ही ठानना ही आवश्यक है। खटपट, खटपट में प्रारंभिक अवस्था में दो पक्षों में विरोध की क्रिया होती है। इस अवस्था में दो व्यक्तियों या पक्षों में कहासुनी झगड़ा चलता है। यह विरोध का हल्का रूप है, परंतु इसमें विशेष अनिष्ट की संभावना नहीं होती। अधिक दिनों तक चलने वाली खटपट अनिष्टकारी हो सकती है। बिगाड़, बिगाड़ उस स्थिति का सूचक है जिसमें दो व्यक्तियों या पक्षों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया गया हो, परंतु बिगाड़ होने पर भी आवश्यक नहीं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के शत्रु ही हो जाएं। बिगाड़ अनबन और खटपट से अधिक दूषित भाव का सूचक है। अनल, अनल इसका अर्थ आग होता है, जैसे उसके पेट में हरदम आग लगी रहती है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि अनल का अर्थ पेट की अग्नि होती है, अनिल इसका अर्थ हवा होता है, उदाहरण के लिए हवा बह रही है। अपमान, अपमान शब्द मान शब्द के विरोध भाव का सूचक है, इसका अर्थ है मान या प्रतिष्ठा की घटना या नष्ट होना, बड़े छोटों, छोटे बड़ों का, बराबरी वाले एक दूसरे का अपमान कर सकते हैं। कहीं कहीं हमारा कार्य ही हमारे अपमान का कारण बनता है, प्रतिष्ठा या मान का कम ही होना अपमान है। अवमान, जिस मान के हम अधिकारी हैं, अगर वह हमें प्राप्त ना हो तो वह हमारा अवमान होगा। दो मित्र एक साथ मेरे घर आए, एक का तो मैं यथेष्ट आदर करूं और दूसरे का अपेक्षाकृत बहुत कम, तो यह दूसरे मित्र का अवमान होगा। यह अवमान में चाहे यथेष्ट आदर करने की भावना ना रही हो, पर मित्र इस अवमान को अपमान समझता है। अवगणन, अवगणन का अर्थ गणना में न लाना है, कुछ कारणों से साभिप्राय जिसे हम महत्व नहीं देते हों, वह वस्तु हमारे लिए अवगणित है। अवगणन उसी बात का होता है जिसे हम महत्व नहीं देते या नहीं देना चाहते हैं। इसमें महत्व को समझते हुए अनदेखी अनसुनी करने का भाव मुख्य है। अवज्ञा, किसी बात को अनुचित अपमानजनक अग्राह समझकर ध्यान न देना अवज्ञा है। यह आचरण, व्यवहार, आज्ञा, आदेश, व्यक्ति या सत्ता की होती है। अवज्ञा में विरोध प्रकट करने का भाव भी होता है, अवज्ञा में तीव्रता और कटुता भी होती है। अवहेलना, अवहेलना निर्दोष और निरीह शब्द है, इसमें तुच्छता की गंध नहीं आती। किसी बात या व्यक्ति की ओर जानबूझकर ध्यान न देना अवहेलना है, पर इसमें विकृति आती है। दो संस्कृतियों, सद्गुणों आदि के प्रति अभिमान प्रशंसनीय नहीं है, आवश्यक भी होता है। उपेक्षा, उपेक्षा का शाब्दिक अर्थ देखना या दृष्टिपात करना है, किंतु प्रचलित अर्थ है सो उद्देश्य अवहेलना, जो किसी को तुच्छ समझकर नीचा दिखाने के भाव से की जाती है, वही उपेक्षा है। तिरस्कार, तिरस्कार का व्युत्पत्ति उत्तक अर्थ है अलग या दूर हटना, पर प्रयोग में तिरस्कार विशिष्ट कारणों से दूसरे का किया गया अपमान और उचित आदर की उपेक्षा ही है। अभियोजन, अभियोजन इसका अर्थ है किसी पर अभियोग लगाना, तथ्य का पता लगाना, फिर दंड दिलाने का प्रयत्न करना। अभियोजन प्राय नैतिक, वैधानिक, व्यवहारगत होता है, यह सत्य या असत्य भी हो सकता है। परिवाद, परिवाद में किसी की बात या व्यवहार के प्रति असंतोष प्रकट किया जाता है, इसमें कष्ट या असुविधा को दूर करने का भाव रहता है, इसमें स्वार्थ रक्षा की भावना रहती है, दंड दिलाने की नहीं। औचित्य की सीमा में आगे बढ़ने पर हम अपने आचरण या व्यवहार को ठीक रखकर परिवाद से बच सकते हैं, पर अभियोजन से नहीं। दोषारोपण, इसका अर्थ साधारणतः किसी पर दोष लगाना होता है। दोषारोपण साधारण हो सकता है और निराधार भी। दोषारोपण कार्य व्यवहार का होता है। दोषारोपण से अपमानित या बदनाम करने का उद्देश्य भी रहता है। चुगली या पैशून्य, चुगली या पैशून्य बढ़ा चढ़ाकर बुरे उद्देश्य से किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके संबंध में कहीं जानने वाली बात है, जिसका उद्देश्य चर्चित व्यक्ति को दंड दिलाने या अपमानित करना होता है। चुगली सर्वथा निराधार नहीं होती, फिर भी वास्तविकता यह है कि इसमें किसी बात या त्रुटि को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। शिकायत, शिकायत प्राय किसी के अनुचित, असंगत या कठोर व्यवहार के संबंध में होती है, इसका उद्देश्य यह होता है कि भविष्य में अनुचित बात ना हो और अनुचित बात पर व्यवहार का परिमार्जन हो। चुगली में चुगली करने वाले का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, शिकायत में शिकायत करने वाले का प्रत्यक्ष संबंध होता है। चुगली दूसरों से की जाती है, पर शिकायत दूसरों से तथा स्वयं उस व्यक्ति से भी जिसके कार्य और व्यवहार के कारण हमें कष्ट पहुंचना है। उपालम्ब उपालम्ब शिकायत का कोमल और हल्का रूप होता है। यह प्राय सद्भावना से प्रेरित होता है। इसमें अनुचित बात का उल्लेख किया जाता है। दंड परिमार्जन की भावना इसमें नहीं रहती। उपालम्ब भी उन्हीं को दिया जाता है जिनसे मधुर संबंध हो। उपालम्ब की शब्दावली सामान्यतः मधुर और व्यंग आत्मक होती है। अभिमान अभिमान अपनी प्रतिष्ठा का अतिरिक्त रूप से होने वाली ज्ञान भी अभिमान है। इस मनोभाव में व्यक्ति दूसरे की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखता। प्रतिष्ठा के प्रति जागरूकता अभिनंदनीय है। अपने सद्भाविक रूप में अभिमान आत्मसम्मान के भाव का घोतक है। अहंग मनुष्य का स्वाभाविक ज्ञान ही मैं हूँ, मेरी भी स्वतंत्र सत्ता है, अपने निर्विकार रूप में अहंग कहलाता है। यही अहंग विकृत होकर और विस्तार पाकर अहंकार का रूप धारण करता है। साहित्य में अंतकरण की उस अभिमानपूर्ण वृत्ति को अहंकार कहते हैं जिसमें मनुष्य अपना और अपने कार्यों का विवरण सुनना पसंद करता है। अहंकार में स्वार्थ की भावना भी आ जाती है। इस भाव के आने पर मनुष्य हर वांछित पदार्थ पर अपना स्वामित्व पहले चाहता है। अहं मन्यता अहंकार की भावना विकृत होने पर अहंग मन्यता बन जाती है। इसमें आत्मा श्रेष्ठता की भावना इस सीमा तक पहुंच जाती है कि परहित आँखों से ओझल हो जाता है। अवलेपन अहम मान्यता की मनोवृत्ति का अपनी सामर्थ्य से दूर तक चला जाना, अर्थात जो गुण या शक्ति हम में नहीं है उसकी हम कल्पना करें प्रचारित करें तो वह अवलेपन कहलाएगा। अवलेपन में अपने आप को व्यक्ति बहुत अधिक मानने लगता है। आत्म सलाघा में व्यक्ति समय कुसमय उचित अनुचित का विचार न कर अपने मुंह अपनी बड़ाई करने लगता है। घमंड यह लोक निंदनीय माना जाता है। घमंड में व्यक्ति अपनी बुद्धि विद्या और शक्ति का अत्यधिक महत्व समझकर बड़ों के प्रति उद्दंड और छोटों के प्रति तिरस्कृत व्यवहार करने लगता है। अभिमान का निकृष्ट रूप घमंड है। मिथ्याभिमान इस बात का सूचक है कि इस प्रकार के अभिमान का कोई आधार नहीं होता। अवलेपन जब आचरण और व्यवहार में उग्र रूप में प्रकट हो तब वही मिथ्याभिमान है। घमंड में कुछ आधार होता है पर मिथ्याभिमान आधारहीन होता है। इस अभिमान में वास्तविकता नहीं होती। गर्व इसका प्रयोग लोक जीवन में सद क्षेत्रों से होता है। इसमें 1/4 भाग में असद की प्रतिछाया होती है। इसमें अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करने की भावना अवश्य होती है परंतु इसकी सीमा विस्तृत नहीं होती। दंभ असद अभिमान का उग्र रूप है। वैशिष्टि होने पर इसका असद अतिरिक्त अभिमान दंभ कहलाता है। दंभ अपनी आप को बड़ा समझता है परंतु अवलेपन में बड़ों तक अपने को पहुंचाना चाहता है। दंभ में उदंडता का निवास होता है। दर्प दर्प वह है जिसके मनुष्य स्वाभिमान को ठेस लगने पर उसकी विद्या और शक्ति आपे में ना रहकर उबल पड़ती है। इस मनोभाव में दृढ़ता कुछ सात्विकतापूर्ण तेजस्विता मात्र होती है। मद वह है जो घमंड का उग्र रूप है जिसमें व्यक्ति विवेक खो बैठता है। इसमें नैतिक और मानसिक संतुलन नष्ट हो जाता है। अपने प्रिय के प्रति होने वाली अस्थायी उदासीनता तथा रोष मान कहलाता है। मान इसमें प्रिय के कार्य व्यवहार के कारण उपेक्षा के फलस्वरूप प्रादुर्भाव होता है। अर्पण। अर्पण शब्द का साधारण अर्थ किसी को कुछ देना होता है। विधिक क्षेत्र में किसी वस्तु पर अपना स्वत्व घटाकर उसे पूरी तरह से दूसरों को देना या सौंपना ही अर्पण कहलाता है। लोक का अर्थ व्यवहार में अर्पण, श्रद्धा तथा नर्म भावों के बड़ों को कुछ देना ही है, जैसे देवताओं को पत्र, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करना, स्वामी के लिए सेवक का सर्वस्व अर्पित कर देना, देशभक्त का मातृभूमि के लिए जीवन अर्पित कर देना। अतः आदरपूर्वक श्रद्धा भाव से बड़ों को कुछ देना अर्पण है। समर्पण। अर्पण और समर्पण में सूक्ष्म अंतर नहीं है। समर्पण का नवीन प्रयोग साधारणतः लेखक अपनी कृतियों को बड़े या प्रिय को समर्पित करने के लिए करने लगे हैं। यहाँ पर श्रद्धा भाव रहता है, अर्पण और समर्थन दोनों ही देने की क्रियाएं हैं। भेंट यह वस्तुतः वह पदार्थ है जो बहुधा बड़ों को आदरपूर्वक दिया जाता है। भेंट बराबर वालों को भी आदर भाव प्रकट करने के लिए दी जाती है। उपहार इसका प्रयोग बराबर वालों को दिए गए पदार्थों के लिए किया जाता है, परंतु भेंट और उपहार में अंतर इतना है कि भेंट में अधीनता और नम्रता का भाव मुख्य है और उपहार में प्रसन्नता और सद्भाव का। उपायन। उपायन अंग्रेजी के गिफ्ट और फारसी के सौगात का समानार्थी शब्द है। उपायन वह पदार्थ है जो अपनी विशेषता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में भेंट के रूप में भेजा जाता है। शासनाध्यक्ष, राजनीतिक प्रतिनिधि एक दूसरे का उपायन देते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग उपायन भेजा करते थे। शुभ अवसरों पर मित्रों, हितैषियों, प्रियजनों और संबंधियों को दी जाने वाली वस्तुएं भी उपायन हैं। घूस। घूस वह उपहार या भेंट है जो किसी वस्तु को अनुचित विधि या निषिद्ध रूप में अपनाए गए कोई काम निकालने के लिए दी जाती है। संस्कृत में इसे उत्कोच और अरबी में रिश्वत कहते हैं। विसर्ग। जब कोई पदार्थ या प्रस्ताव इस अभिप्राय से किसी के सम्मुख रखा जाए कि यदि वह न्याय संगत और उचित समझता हो तो उसे ग्रहण कर लिए या मान लें, ऐसे में यह पदार्थ या प्रस्ताव विसर्ग कहलाता है। विसर्ग समझौते के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें दबने और अपकृत करने का भाव भी रहता है। विसर्ग अपनी इच्छा और अपनी ओर से उपस्थित किया जाता है। सहमत और असहमत होना दूसरे पक्ष की इच्छा पर निर्भर रहता है।